Hare Krishna. Once again, here is our fortune to listen His Grace Sarvabhauma Prabhuji on Sunday, 17th of August 2008, on Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 2, Verse Number 16. Hare Krishna.
Dharam ke virudh na ho, dharma virudh ho. Jo dharma ke virudh na ho, bal jo dusron ki raksha karta hai, wo Bhagwan kehta hai mera swarup hai. तो ये बलभद्र है, एक नाम बलराम जी का बलभद्र है, जो सबका शुभ करने वाले हैं और विशेष रूप से वो हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि असुर हैं, जो अशुभ है, उस सबको साफ करके तैयार करते हैं, जैसे कि भगवान उसमें आके विराजमान हो। तो कल इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि अब हम इस वक्त बैठे हैं कहां, मथुरा में, जहां कथा चल रही है, मथुरा में कंस का कारागृह है। देवकी और वसुदेव उस जेल खाने में बंद हैं। छह बच्चे देवकी के कंस ने मार दी और तब भगवान के आदेश से उनका प्रथम विस्तार अनंत शेष देवकी के उदर में प्रवेश किया। भगवान के लिए स्थान तैयार किया। तब भगवान ने देवी योग माया को आदेश दिया कि इस सातवें देवकी के गर्भ को जो शेष है, जो मेरा धाम है, इसको संकर्षण करके खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापन करो, क्योंकि ये है तो नित्य रोहिणी का पुत्र, मेरी विनती के ऊपर मेरे स्थान को तैयार करने के लिए आया है कि मैं अब देवकी के उदर में प्रकट होने वाला हूँ। तो इन श्लोकों के में भावार्थ में प्रभुपद ने एक विशेष चीज लिखी है, उसको पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रभुपद ने कहा, भक्त भगवान के निर्भय होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो भगवान की भक्ति में तलीन रहते हैं। नौ प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति में इतना मगन रहते हैं कि कोई भय नहीं रहता है। फिर भी जब तक भौतिक जगत में रहते हैं तब माया से डरते रहते हैं। भक्त को माया से सदा के लिए डरता रहना चाहिए और प्रतिदिन प्रार्थना करते रहने चाहिए, हे महामाया, आप भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान की भक्ति में लगने जा रहे हैं, आप कृपा करके हमारे को मुक्त कीजिए, हमको बंधन में मत डालिए। प्रभुपाद जी कहते, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ लेकिन आप डरते नहीं हो माया से, मुझे इस बात का बहुत बड़ी परेशानी। तो भावार्थ में हमारे आचार्यों ने लिखा है कि देवकी कंस भय है, उस भय से देवकी पवित्र हुई। क्या पवित्रता क्या हुई? कि मरीचि मन का प्रतीक है और मरीचि के छह पुत्र काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इस रूप में छह जो गर्भ असुर सांप के कारण आए थे और अपने ही पिता के हाथों मरने का उनको सांप था, कंस के हाथों उनको मरना था, तो वो देवकी के उदर में पवित्र होने के लिए आए थे ताकि वो शराब से मुक्त होकर वापस अपने स्थान पे जाएं। तो ये कहने के बाद कहा, जब तक भक्त के हृदय में ये छह अवगुण रहते हैं तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। तो कंस रूपी भय देवकी भक्ति रूपी को पवित्र करके इन छह काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को नाश किया, तब भगवान का आसन श्री बलदेव जी वहां प्रकट हुए। अब वो स्थान तैयार हुआ और बलदेव भी चले गए रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा। अब जगह खाली है, भगवान खाली जगह में आते हैं, कहते रिक्तता, खाली जगह जब होगी कुछ अंदर और नहीं होगा, किसी और के लिए थोड़ी सी भी लालसा बाकी नहीं बचेगी, तब भगवान उसमें प्रकट होंगे। वो नवमी तिथि होती है ना, उसको रिक्तता तिथि कहते हैं, भगवान राम का जन्म कहते हैं रिक्तता। तो अब अष्टमी की रात है, 12 बजे हैं पूरे, अब रिक्तता है, बिल्कुल खाली है और कुछ नहीं है, देवकी के अंदर बिल्कुल साफ हो गया। अब भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक लिखते हैं। इसके बाद आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम भयंकर आविविशे अंश भागेन मन अनंक दुम दुबिहे भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम भयंकर आविवे अंश भागेन मना अनंक द्वंद्वभि भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशं स भागेन मन अनंक द्वंद्वभि। आवृत्ति कीजिए, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम अभयंकर आविवेश अंश भागेन मनहा अनंक द्वंद्वभि। और माता जी लोग आप कीजिए आवृत्ति एक, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेश अंश भागेन मन अनंक द्वंद्वभि भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेश अंश भागेन मनः अनंक द्वंद्वभि भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागेन मनः अनंक द्वंद्वभि। अनंक द्वंद्वभि वसुदेव जी का नाम है, जिसके जन्म के ऊपर देवताओं ने दुमदुबी बजाई थी, वो तूतारे बजाए थे, इसलिए उसका नाम है अनंक दुमदुबी। तो वसुदेव जी का ये नाम है। मन उसके मन में, वसुदेव जी के मन में क्या हुआ, आवेश परवेश, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, किसने, भगवान। कैसा भगवान, कौन सा वाला भगवान, बोले विश्व आत्मा। भगवान कौन है, भगवान बोले विश्व आत्मा। विश्व आत्मा का अर्थ है, प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में रहने वाले को विश्व आत्मा कहेंगे। जो सबके हृदय में रहता है, तो विश्व के कण कण में जो रहता है वो विश्व आत्मा है। एक इसका अर्थ ये का है, और दूसरा इसका अर्थ विश्व आत्मा का लिखा है, जिससे सब प्रेम करते हैं, विश्व आत्मा विश्व जिससे प्रेम करता है, वो भगवान जिससे विश्व प्रेम करता है, सभी प्राणी जिससे प्रेम करते हैं उसको कहते हैं विश्व आत्मा। तो अनंक दुम दिवी वसुदेव के हृदय में भगवान विश्व आत्मा क्या किया? आविशेष कैसा भगवान? सर्वात्मा के विश्व आत्मा, विश्व का आत्मा सबसे से प्रेम करते हैं, तो विशेष काम भगवान का क्या है? कोई भगवत गीता में भगवान कहते हैं मुझे करने को कुछ नहीं है फिर भी मैं सब काम करता रहता हूं, लेकिन विशेष काम भगवान आप क्या करते हैं? कोई विशेष काम आपका है? बोला हाँ, भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभय दान देना ये मेरा विशेष काम है, भक्तों का भय मुक्त करना, भक्तों को भय मुक्त करना, भक्त वत्सल्य, भक्त वत्सल्य, वत्स कहते हैं बच्चे को, जैसे गाय का बछड़ा होता है ना गाय का, ऐसे भगवान अपने भक्तों को उस बच्चे से भी निकट इतना रखता है कि उसको कोई भय नहीं रहता है। बच्चा माँ की गोद में होता है उसको कोई भय नहीं होता है ना, दुनिया में कितना भी किसी को भय हो लेकिन बच्चे को भय नहीं रहता है, माँ की गोद में है तो किस चीज का भय है भाई, माँ चिंता करेगी। तो अभयंकर की परिभाषा ये है कि जो भक्तों को भय से मुक्त करने वाले विश्वात्मा भगवान है, विश्वात्मा भगवान इसका मतलब सबको जो जरूरत की चीजें हैं वो दे रहा है, उस हिसाब से विश्वात्मा है। इस बात का भगवत गीता में जहां ये श्लोक आता है, समोहम सर्वभूतेषु मन न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय, मैं समभाव से सारे संसार के साथ बर्ताव करता हूं, किसी से मेरा द्वेष नहीं है कोई मुरा, मैं किसी से प्रेम भी नहीं करता हूं, वो विश्व आत्मा की परिभाषा है कि मैं परमात्मा हूं, सबको खाने के लिए अन्न देता हूं, जल देता हूं, हवा देता हूं, लेकिन फिर भी एक विशेषता है, ये मैं भक्त, जो मेरा भक्त होते हैं उनके लिए मैं अभयंकर हूं, उसके हृदय में मैं बैठा होता हूं, वो मेरे हृदय में बैठा होते हैं। तो ये भगवान का एक विशेष भक्तों के ऊपर अनुग्रह है, और इस अनुग्रह को भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, मेरे भक्तों का मैं थोड़ा भी भय उनके हृदय में देता हूं तो मैं कांप जाता हूं, अरे मेरे भक्त को कितना भय कहां से आ गया, ये क्यों दुखी हो रहा है। एवानुकंपा, अनुकंपा, कंपा कंपन से निकलता है शब्द, कंपन का मतलब किसी को आपने देखा है अचानक कोई ऐसे रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए आपको कंपनी ऐसी कंपन आती है क्या हो गया ऐसे लगता है ना, तो भगवान कहते हैं मुझे ऐसी कंपन जैसा लगता है मेरे भक्त को इतना परेशानी क्यों हो रही, तो फिर कंपन में क्या करते हो? तेषाम एवानु अहम अज्ञान जतम नाश्यामी आत्मभाव इस तो ज्ञान दीपेन भास्ता, अरे उसके हृदय में बैठा हूं ना वहीं से अंदर से उसके अंदर सफाई कर देता हूं, कचरा सारा साफ कर देता हूं ताकि बेचारा ठीक तरह से मेरे को देख सके, वो मेरे को न देखने के कारण दुनिया में दुखी हो रहा है तो मैं उसको बिल्कुल अंदर साफ कर देता हूं, ये भगवान की अभयंकर का भाव है। तो ऐसा भगवान जो भक्तों को अभयदान देने वाला है वो भगवान अनंक नंद भी वसुदेव के मन में आविशेष अंश भागे न, इसके ऊपर चर्चा छह प्रकार से चर्चा केवल इस अंश भागे न के ऊपर की है। आवेश का मतलब प्रवेश किया, श्रीधर स्वामी ने विशेष चर्चा करते हुए संपूर्ण रूपे न, भगवान जैसे कभी साधारण परिभाषा में सोचते हैं ना भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण जैसे कहते हैं तो वो है, इसका अर्थ है अंश भागे न, पर सारे उनके अंश उसमें समाये हुए, जितने भी उसके अंश और कला हैं, जो ये श्लोक हम पढ़ते हैं ना इति चांश कला अंश, वो जितने भी अवतार हैं, कौन से अवतार हैं? एक तो नारायण आदि जो भगवान के अंश हैं, और फिर पुरुष अवतार विष्णु आदि, और फिर नरसिंह राम वरहा आदि अवतार, ये सब अंश में आते हैं, ये सब अंश भगवान में समा गए। और भागेन अर्थ क्या है? भागेन का अर्थ भग शब्द जो भगवान में है वो ये भग एक ही है, जो षड गुण संपन्न जिनमें 6 गुण परिपूर्ण है उसको कहते हैं भग, तो वो भगवान अपने 6 गुणों से परिपूर्ण अपने सब अंशों के साथ अनंक दुम्द भी वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए। वसुदेव का मन शुद्ध अंतःकरण है, अंतःकरण कहते हैं बाहर, करण कहते हैं इंद्रियों को, करण कहते हैं इंद्रियों को, हाथ पांव आंख नाक कान इसको करण कहते हैं, ये बाहर करण कहलाती है, और अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। ये अंदर की इंद्रियां हैं। बाहर तो हम रोज साफ करते हैं, मुंह भी साफ करते हैं, आंख भी साफ करते हैं, नाक भी साफ करते हैं, कान भी साफ करते हैं, बाहर तो इंद्रियां सब साफ करते हैं, लेकिन अंदर में साफ करने का साधन है नहीं कोई, और अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है। इसलिए अंदर साफ करने का साधन हमको समझ में आ जाए, चेतो दर्पण मार्जन, चित्रूपी दर्पण को मार्जन कैसे होगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन के द्वारा जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तो फिर ये भगवान सबके हृदय में प्रवेश करके प्रकट होंगे। ये श्लोक है कि कैसे वसुदेव के शुद्ध अंतःकरण में भगवान प्रकट हुए। जब भगवान किसी के हृदय में प्रकट होते हैं तो सबके हृदय में, सबके हृदय में है, लेकिन जागृत किसने कर लिया है भगवान को, अथवा कौन भगवान की प्रति जागृत हो गया। अब ये जागृत कौन हो गया है, और जो जागृत हो गया उसके कैसे लक्षण है, दूसरे श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं अब वसुदेव के हृदय में भगवान आ गया तो सब विवृद्ध, अरे कृष्णा, सब विवृद्ध पौरुषम धाम, इधर 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 है, गड़बड़ उधर नहीं है, विवृद्ध पौरुषम धाम। अब धाम का एक अर्थ है जहां भगवान आके रहते हैं, भगवान कहते हैं इसमें इसमें इधर, हरे कृष्णा, ये हिलने से होता है, हरे कृष्णा, हाँ धाम। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने तीन चार आचार्यों के भाव लिखे हैं। धाम का एक अर्थ है जहां भगवान आके रहते हैं। अब वसुदेव क्या हो गया, भगवान का धाम हो गए, और भगवान के हृदय में वसुदेव आके बैठ गए, वसुदेव के हृदय में भगवान आके बैठ गए तो भगवान हो गए, अब वसुदेव हो गया भगवान का धाम। और एक विभ्रत, वो फिर जब भगवान हृदय में आते हैं तो वो व्यक्ति प्रकाशमान हो जाता है। आपने देखा है लोगों का, साधु महात्माओं का जब फोटो को देखते हैं उनके चारों ओर तेज दिखाते हैं, वो तेज कैमरा से ऐसे कंप्यूटर से आजकल दिखा देते हैं कि सबके अंदर से तेज निकल रहा है, लेकिन ऐसा तेज नहीं, लेकिन जिसके हृदय में भगवान जागृत कर दिए हैं जिसने, उसके अंदर से प्रभाव ऐसे बहुत प्रकाश निकलता है, उसके प्रकाश इतना तेज उसमें होता है, इसके लिए लिखा है उसको कोई देख नहीं सकता है और उसको कोई समझ भी नहीं सकता है। तो ये तेज निकलता है साधु संत पुरुषों के संग नजदीक जाते हैं जिन्होंने भगवान को हृदय में जागृत कर रखा है, तो फिर उधर जाते ही जो भक्त होते हैं उनको बड़ा आनंद मिलता है, और जो कंस जैसे लोग होते हैं वो बहुत बड़े डरते हैं और उसको भगाने का बड़ा चेष्टा करते हैं। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत अपने भाव का भावार्थ लिखा है। प्रभुपाद का भाव है, कलयुग में कहते हैं कृष्ण अवतार नहीं लेता, अरे कृष्ण ने अवतार तो लिया है, कृष्ण भावना संस्था के उदर में कृष्ण ने अवतार लिया है, कलो काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, प्रभुपाद लिखते हैं। अब कृष्ण अवतार लिया है संस्था के अंदर अपने नाम के रूप में, लेकिन कंस जैसे लोग इसको, जैसे कंस ने वसुदेव को अंदर बंद किया था, वो इसके प्रचार को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद का अनुभव बता रहे हैं कि ये तो हमारा आंदोलन जो है वो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को नाम के रूप में कलयुग में प्रकट किया है। और क्यों किया है, यदा यदा ही धर्मस्य लिखने के बाद प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में भगवान के संदेश भगवद गीता को फैलाने का दायित्व, भगवान के संदेश को फैलाने का दायित्व प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ, हरे कृष्णा, इसके अंदर हरे कृष्णा, अरे भैया जागो, चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से भारतवासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व रखा है कि भगवद गीता की शिक्षा को विश्व में प्रचार करो। भारत भूमि से हैला जन्म जार, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करो, बैठ के भगवान का भजन करो और जन्म हृदय को साफ करो, पवित्र करो, भगवान को प्रकट करो, और फिर जाके भगवान के संदेश को पूरे विश्व में प्रचारित करो। भारत भूमि से हैला मनुष्य जन्म जान, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, जाओ सबका उपकार करो, पूरे विश्व में जाके प्रचार करो। ये चेतना महाप्रभु ने सब भारतवासियों के ऊपर दायित्व रखा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं पता नहीं क्यों भारतवासियों ने इस भगवद गीता के प्रचार को भुला दिया, और इसके भुलाने के कारण कुछ प्रचार करने भी गए तो भगवत गीता का इधर उधर से घुमा के उसके अंदर भगवान को छुपा दिया, भगवान को ही बाहर निकाल के भगवत गीता का प्रचार शुरू कर दिया। इसलिए भगवान को दोबारा हरे कृष्ण संस्था के गर्भ से नाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होने की आवश्यकता पड़ गई। प्रभुपाद ने भावार्थ ऐसा लिखा है, इसका भाव ये लिखा है कि ऐसे इसकी आवश्यकता पड़ गई। तो अब वसुदेव के अंदर से प्रकाश निकलने लगा, ऐसा प्रकाश निकलने लगा कि और भगवान का प्रकाश वसुदेव ने देखा, और दुरासदो अब उसको कोई देख नहीं सकता है वसुदेव को, इतना उसमें से प्रकाश निकला है। अति दुर्दर्शो उसको देखने में हर एक व्यक्ति संभव नहीं है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, अब बहुत बड़ा विशेष कार्य हो जा रहा है, होने जा रहा है। अब वसुदेव के हृदय में भगवान आए, वसुदेव चमचमा के चमकने लगा, भगवान के प्रकाश को हृदय में धारण किया, भगवान के धाम बन गए। अब वहां से ये प्रकाश कैसे देवकी माता के हृदय में जाता है उसका वर्णन इसके बाद वाले श्लोक में आता है। बहुत सुंदर शब्द लिखा है, ततो जगन मंगलम अच्युत अंशम। ततो जगन उसके बाद, जगत मंगलम अच्युत अंशम, जगत का मंगल करने वाला, जगत का मंगल मतलब मंगल कहते हैं शुभ कार्य को, जगत का शुभ करने वाला कौन, अच्युत अंशम। भगवान अच्युत जो कभी चूकते नहीं है अपने वायदे में, वो भगवान अपने सारे अंशों के सहित अब कहां आए, वसुदेव के हृदय से कहां जा रहे हैं, समाहितम सुरसुते न देवी, समाहितम सुरसुतेन देवी, सुरसुतेन सुरसेन की देवी, उसके कुल में आई हुई देवी देवकी के हृदय में समाहित, वहां से निकल के अब देवकी के हृदय की तरफ अब उनमें मुंतकिल हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम, इसका अर्थ लिखा है सर्वात्मकम, सबको सुख देने वाला, और विशेष रूप से शंकर आदि देवों को सुख देने वाला। सर्वात्मकम, सर्वात्मकम मतलब सब प्राणियों को सुख देने वाला, और विशेष रूप से देवों को सुख देने वाला, क्योंकि प्रार्थना करने तो देव गए थे, भूमि को लेकर गए थे, ब्रह्मा जी और शंकर आदि सब देवताओं को लेकर गए थे, तो उनको सुख देने वाले भगवान, जगत का तो मंगल करेंगे लेकिन देवताओं को सुख देने वाले भगवान, क्या किया उस भगवान ने, अब वहां से निकल के क्या किया, काष्ठा यथा आनंद करम मनसः। काष्ठा कहते हैं दिशा को, आनंद कर कहते हैं चंद्रमा को। जैसे शाम को सूरज अस्त होता है ना, तो उसका प्रकाश चंद्रमा में प्रवेश करता है, और पूर्व दिशा से फिर चंद्रमा निकलता है, पश्चिम दिशा में सूरज डूबता है, उसका प्रकाश चंद्रमा में प्रवेश करता है और वो पूर्व दिशा से निकलता है। ऐसे वसुदेव के हृदय से वो भगवान जो प्रकाशमय हो थे, वो देवकी के हृदय में प्रवेश हुए। जैसे उदाहरण दिया, जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में प्रविष्ट होता है, अब वो दिशा चमकने लगी, अब चंद्रमा, अब देवकी, अब इसके भावार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है, इसको बोलते हैं दीक्षा, मानसी दीक्षा। अपना प्रकट किया हुआ हृदय में भगवान गुरु अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, जैसे वसुदेव ने भगवान को अपने मन से देवकी के हृदय में स्थापित किया। ये सनातन प्रणाली है, किस बात की, दीक्षा की। ऐसे भगवान महात्मा जो अपने भगवत भक्ति के द्वारा हृदय में प्रकट करते हैं भगवान को, वो दीक्षा के समय अपने शिष्य के हृदय में भगवान को स्थापित करते हैं। ऐसे वसुदेव ने इसके बाद लिखा है भगवान श्री कृष्ण का अथवा बलराम जी का इनका प्रकट्य मानव का जैसे स्त्री पुरुष से मिलन से होता है ऐसे नहीं हुआ है। ये तो दीक्षा प्रणाली के द्वारा भगवान प्रकट हुए, ये साधारण बच्चों की तरह इनका जन्म नहीं हुआ है, ये बात इस बात का सूचक है। कभी कहते हैं भगवान गर्भ में कैसे आ गए, एक महात्मा कहते हैं वो अंदर बाहर दोनों जगह रहते हैं, पहले कब अंदर नहीं थे जो अब अंदर आ गए। अरे कुछ भक्तों के सामने खड़े हो जाते हैं बाहर से, गजेंद्र के सामने आ गए, ध्रुव महाराज के सामने खड़े हो गए बाहर से, और देवकी और कोशला के अंदर से प्रकट हो गए, उनको प्रकटन में कौन परेशान कर सकता है, तो उनकी इच्छा है बाहर भी है अंदर भी है। तो गजेंद्र के लिए तो बाहर से आ गए गरुड़ के ऊपर चढ़ गए, गो कहा था विंद कहा नहीं उससे पहले भगवान पहुंच गए, विंद तो भगवान के आने के बाद सुना भगवान ने क्या बोला, विंद तो बाद गो कहने के ऊपर तो मुझे ही बुला रहा है भगवान समझ गया, तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आ गए, तो बाहर से उनको दर्शन दे दिया और ध्रुव महाराज के सामने बाहर से प्रकट हो गए, देवकी और कौशल्य आदि के अंदर से प्रकट हो गए, तो उनको प्रकट होना है अंदर से हो या बाहर से हो इसमें कौन सी आपत्ति की बात। और फिर ऐसे लिखा है उसके चार पांच दिन बाद, अब देवकी के हृदय में भगवान प्रवेश हुए, उसके चार पांच दिन बाद देवकी को ऐसे लगा कि अब भगवान मेरे उदर में आए हैं। और कुछ तो महात्मा लिखते हैं फिर तो देवकी का पेट ऐसे जैसे हवा से गुब्बारा होता ऐसे होने लगा, लेकिन भगवान तो उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। और इसके बाद लिखते हैं देवकी के अंदर भगवान के प्रकट होने से अब देवकी से भी प्रकाश निकलने लगा, लेकिन देवकी क्योंकि कंस की जेल में थी तो जैसे आग किसी डब्बे में रख दी जाए तो उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता है ऐसे। और दूसरा उदाहरण दिया है जैसे किसी खल के पास ज्ञान हो और किसी को नहीं दे, उसको बोलते हैं खल के पास ज्ञान। तो अब देवकी के अंदर भगवान है लेकिन कोई उसका लाभ नहीं ले सकता है क्योंकि वो जेल के अंदर बंद पड़ी है। किसी खल के पास ज्ञान है लेकिन किसी को देता नहीं है तो वो बेकार में है। अब कंस की कारागृह में देवकी इस प्रकार से जैसे आग ढकी हुई हो ऐसे भगवान के प्रकाश के होने के कारण कंस के अंदर चला गया। कंस ने जाके देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, देवकी मैं जानता हूं 6 बच्चे मैंने मारे हैं, 7वें का भी आरोप लोगों ने मेरे ऊपर लगाया कि कंस ने इसका बच्चा गिरा दिया है, तो मेरा बहुत बड़ा बुरा मेरी तो बड़ी मेरे को देख के बहुत भयभीत हुआ करती थी, बड़ा इसका मुख बिल्कुल कुमाया हुआ फूल जैसे कुमला जाता है ऐसा फूल दिखता था मुख, आज पता नहीं क्यों ये बहुत मुस्कुरा रही है देवकी, बड़ी प्रसन्न दिख रही है, ये कंस अनुभव कर रहा है। अरे क्या हुआ है, ऐसे तो नहीं है कि हरि जो मुझे मारने वाला है इसके उदर में आ गया है। और हरि का भावार्थ लिखते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये हिरी शेर को कहते हैं, और एक जैसे नरसिंह देव बन के आए थे ऐसे हरि दोबारा कहीं ये जैसे हाथी को शेर मारता है ऐसे मेरे को मारने के लिए मेरा शत्रु हरि वो शेर इसके हृदय में तो नहीं कहीं आ गया, वो हरि को हिरी ये 2 शब्दों से परिभाषा की है आचार्यों ने, और इसके हृदय में मेरा शत्रु हरि वो भगवान विष्णु आ गया है, वो जो नरसिंह रूप में आया था ना शेर जैसा बन के वो मेरे को मारेगा छोड़ेगा नहीं, ये कंस को मालूम हुआ। और फिर कंस विचार करने लगा मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में, मुझे क्या करना चाहिए। फिर कहा मुझे क्या करना चाहिए, भगवान तो आए हैं वो तो अपना कार्य करेंगे ही, प्रभुपाद ने कहा भगवान का कार्य क्या है, सब लिखा है परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करेंगे दुष्टों को मारेंगे, काम तो वो अपना करेंगे। लेकिन ये एक तो स्त्री है देवकी, दूसरी मेरी बहन है, तीसरी गर्भवती है, इस वक्त अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरी बहुत अपकीर्ति होगी, लोग कहेंगे एक तो स्त्री को मारा और फिर गर्भवती को मारा, इसमें मेरा नाम तो नहीं होगा। अब ये शिष्टाचार कंस को भी आता था, वो भी इस ज्ञान से अवगत था, जानता था इस ज्ञान को कि बच्चों को बूढ़ों को स्त्री को असहाय को नहीं मारना चाहिए। अब कंस ने कहा मैं मारना तो चाहता हूं लेकिन मारने का मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। युद्ध में आमने सामने मैं मारूं या वो मारे, उसमें तो क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन इस वक्त अब भगवान जो आ गए तो कंस अंदर से भयभीत हो रहा है। अब इसके बाद एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, कंस वापस जाके अपने घर में बैठा तो कृष्ण उसके दिमाग में ऐसे घुस गए दूर से उसकी अपनी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, उनकी दोनों का नाम है अस्थि और प्राप्ति। ये असुरों की पत्नियां ऐसी होती हैं, अस्थि का मतलब मेरे पास है, प्राप्ति का मतलब और क्या कथा करना है और कथा करो, जो है वो और कथा करो, इसको बोलते हैं अस्थि और प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बेटी, वो पत्नियां आती थी तो बड़ा रेशमी कपड़े पहने होते थे और सोने के प्यालों में दूध लाती थी, तो उनको देखे बोला कृष्ण बल्लभ कृष्ण, जाओ जाओ जाओ। वो पत्नी बोले अरे हम आपकी पत्नी है। अच्छा अच्छा, वो उनको देख के देखा ये वो प्रकाश है, प्रकाश है, कहीं से वो कृष्ण तो नहीं आ रहा है, बोला मुझे मारने वाला तो नहीं आ रहा है। जहां देखे वहां उसको कृष्ण, और कभी तो बलराम जी जब आए थे उसको सांप दिखाई दे, और जब कृष्ण प्रकट हुए तो चारों ओर से प्रकट, तो अपने घर वालों को देखते भयभीत हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी लिखते कि इतना कृष्ण भावना भावित था कंस कि एक क्षण भी उसके मन से कृष्ण बाहर नहीं जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको शत्रु मान के कृष्ण भावना भावित। ऐसे भक्त भी कृष्ण भावना भावित होते हैं, उसको भी भगवान दिखता है। भगवान जब भक्त को दिखता है तो वो प्रसन्न होता है, और कंस को जब भगवान दिखता है तो भयभीत होता है। दोनों को भगवान दिखता है अगर वो ध्यान करेंगे भगवान को, लेकिन दोनों का परिणाम अलग है, दोनों के परिणाम में अंतर है। अब कंस को भी भगवान दिख रहा है, जहां देखता है भगवान दिखता है। हा? जो यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान ने भगवत गीता में, और कंस को भगवान सर्वत्र दिख रहा है, और सर्वत्र भगवान दिख रहा है कंस को, लेकिन कंस आ गया हमारेगा। तो कंस को भगवान दिखता है भयभीत होता है, और भक्त को भगवान दिखता है बड़ा आनंद आता है। दोनों में अंतर ये है। अब कंस की ये दशा है, इतने में इसके बाद 25वें श्लोक में पहुंचते हैं, तो लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद आदि देवता, नारद आदि ऋषिगण और भक्त, देवल व्यास और असीत ये ऋषि, और इंद्र वरुण आदि देवता, ये सब गुप्त रूप से उस कोठरी में प्रवेश किया जहां देवकी के हृदय में भगवान आके प्रवेश किया था। तो इनका नाम लिखा है कि ये देवता आए वहां और स्तुति करने लगे। गर्भ स्तुति इसका नाम है। दुनिया के अंदर गर्भ में आने को बहुत बुरा माना जाता है, गर्भ गले, उनको गर्भ में पड़ना पड़ेगा, बहुत बुरा माना जाता है गर्भ में आना, लेकिन भगवान की स्तुति होती है जब वो गर्भ में आए। ये अंतर है संसार के व्यक्तियों का गर्भ में आना और भगवान का संसार में। जगत मंगलम अच्युत अंशम, जगत के मंगल के लिए जब आते हैं तो उसका, अब ये सारे देवता प्रार्थना करने के लिए आए हैं। इन देवताओं के नाम भी सुन लीजिए और वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ब्रह्मा भवश्च, ब्रह्मा जी भव कहते हैं भगवान शंकर को। भव का मतलब होता है वैसे संसार, जन्म मृत्यु होता है, इसको भव कहते हैं, और इसको भव सागर कहते हैं, और भव कहते हैं शंकर को, उनकी पत्नी का नाम है भवानी, भव और भवानी। तो भव भी आया। हाँ, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर् नारदादिभिः देवैः स अनुचरैः साकम् गीरभिः वृषणम् अएडियम्। अब कौन कौन आया भगवान के दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और बहुत से ऋषियों के संग, नारद, देवल, असित, व्यास आदि, और देवता इंद्र, चंद्र, वरुण आदि गुप्त रूप से देवकी के उस कमरे में प्रवेश किया अपनी प्रार्थना करने के लिए। भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखा है, संसार में दो प्रकार के लोग हैं भगवत गीता से, दिवाओ भूत स्वर्ग और लोके अस्मिन देव असुर एव च। इस पृथ्वी के ऊपर सदा के लिए दो प्रकार के लोगों का उत्पत्ति होती है, दिवाओ इमाओ स्वर्गे, स्वर्गे का मतलब है उत्पत्ति, स्वर्ग कहते हैं सर्जन, सर्जन का मतलब ये दुनिया में पैदा होते हैं, दो प्रकार के लोक हैं, कौन से देव असुर एवच, एक देवता और दूसरे असुर, देवताओं को सुर भी कहते हैं, सुर और असुर, जैसे इंद्र को सुरपति कहते हैं देवताओं का राजा, सुरेंद्र, सुर मतलब देवता और असुर मतलब जो देवताओं के विपरीत हो। तो दो प्रकार के लोग हैं, जो देवता होते हैं भगवान के आने के ऊपर प्रसन्न होते हैं, और असुर होते हैं वो बहुत बड़े भयभीत और दुखी होते हैं और भगवान को मारने के लिए चेष्टा करते हैं, क्यों, क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाहते हैं, भगवान आ गया तो वो भगवान नहीं बन सकते, उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। क्या कहता था हिरण्याकश्यप, मैं भगवान हूं, मेरे को भगवान मानो, और कोई भगवान नहीं है। असुर क्या बनना चाहते हैं, अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त संसार के ऊपर असुर ज्यादा है, सुर ज्यादा है, भगवान के भक्त ज्यादा हैं कि भगवान के आने के ऊपर प्रसन्न हो ले कि भगवान के जाने के ऊपर प्रसन्न होने वाले ज्यादा हैं। हाँ, भगवान से, भगवान को लोग जल्दी जाए घर से तो अच्छा है, बैठेगा तो हम अपने जो करना चाहते हैं वो काम नहीं करना चाहे कर सकते हैं, भगवान आए हमारे हृदय में हमको डर लगता है। एक भक्त बता रहा था इंग्लैंड में धनंजय प्रभु के, हमारे ठाकुर जी की मंदिरों में जो पोशाक बनाते हैं, जो ड्रेसेस बनाते हैं प्रायः वो कारीगर मुसलमान हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं प्रायः वो कारीगर मुसलमान हैं, और जो ठाकुर जी का श्री विग्रह शिल्पकार है उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं। कैसे भी जाने अनजाने में भगवान की सेवा हो रही है उनके द्वारा, जाने अनजाने में उनके द्वारा सेवा हो रही है। वो बॉम्बे का मंदिर जब बन रहा था तो एक मुसलमान जो था वो काम कर रहा था पत्थर का, तो एक एक को टुक टुक अल्लाह 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 करके काटता था। प्रभुपाद ने सुना, बोला भक्त है, भगवान को याद करके काम कर रहे, तो उस दृष्टिकोण से द्वेष भाव नहीं था। तो वो बहुत सुंदर बना के आया पोशाक, तो प्रभु जी ने उसको भगवत गीता बोला, ये भगवत गीता आपको हम भेंट करते हैं। उसने भगवत गीता को ऐसे उठाया, हरे कृष्ण, सर को लगाया, बोला मैं ये नहीं ले सकता। बोले भाई ले लो, क्यों नहीं लेते। बोला है तो मालूम है मुझे बहुत अच्छी, ये ले जाऊंगा तो मैं फिर आप जैसा हो जाऊंगा। तो फिर मेरे को भी सर मंडवा के मंदिर में आके रहना पड़ेगा, मैं मेरे को काम करना है अभी, मेरे बच्चे पालने, मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। बोला मैं मानता हूँ ये बहुत उत्तम चीज है, और ऐसे भी मैं मानता हूँ कि आप ये पढ़ते हैं तब भगवान की सेवा करते हैं तब हमारा पेट चल रहा है तब हम आपसे, लेकिन ये ले जाएंगे तो इसको कहते हैं भगवान से बहुत डरते हैं कि ये कहीं आ गया तो हमारा धंधा चला जाएगा। उसने बोला, बेचारे ने कहा कि नहीं महाराज, ये नहीं ले जा सकता, आपकी सेवा करूंगा लेकिन नहीं। तो प्राय लोगों को कभी कभी ऐसी भ्रांति कोई लोग डालते हैं, ओ अर्जुन कृष्ण वाला चित्र घर में मत रखना, महाभारत हो जाएगा। अरे हम रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, मंदिर के अंदर 200 आदमी भोजन करते हैं, यहाँ महाभारत होती नहीं है, तुम घर में 3 आदमी रहते हो उसमें महाभारत भगवान कराता है कि तुम सास और बहू करती हो। भगवान के ऊपर दोष देते हैं, आए बहुत अच्छा एक चित्र सुबह सुबह आदमी लेके सर के ऊपर उठा के आ रहा है, वो पेंट बेचे वो पेंटिंग तो 10-15 हजार रुपए, महाराज जी आपको देनी है। क्यों भाई, घर में हमारे कलह हो रहा है। भगवान को निकालो, बहुत सुखी हो जाएंगे, मूर्ख है लोग के नहीं, इसको बोलते हैं असुरी प्रवृत्ति के लोग। वो भगवत गीता के अंत में कह रहा है संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनर्दत्त तत्र श्री विद्यो धृति भूतिर मतिर मम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन है वहीं सब श्री है वहीं धन है,
निकालो धन को घर में, भगवान को निकालो बाहर, तो लक्ष्मी जी अपने आप पीछे से चली जाएगी। श्री है, विजय है, नीति है। मुझे इतना सुंदर शब्दों में भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, और लोग बड़े चिंतित होते हैं कहीं महाभारत हमारे साथ, जिनके घर में नहीं है उनके घर में महाभारत कौन करा रहा है। भरी लोगों को चिंता होती है कैसी बहाना हो भगवान को घर से कैसे निकाले, कोई बहाना चाहिए, कहीं से कोई सुन लेना ऐसी बात। नहीं नहीं, ये तो नहीं घर में रखना। किसको घर में रख रहे हैं, जाके देखो घरों में किसके चित्र लगे हुए हैं। भूत प्रेतों के चित्र लगा के बैठे हैं, भूत ही बनेंगे उसको देखते देखते, और क्या होंगे। चारों ओर से देखा है घरों में चित्र किसके लगाए हुए, किसी के हाथ में डंडा उठाया हुआ है बैठ के रूप में, मूर्ख समाज शाम 12 घंटा दुनिया सारी ऐसे बैठेगी टीवी के ऊपर, काम क्या कर रहे हैं, एक हाथ में डंडा है और एक बाल फेंकता है, वो इधर से उधर जाता है, वो पागलों की तरह घूम रहे, तुम बेकार बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, पूरा देश स्थगित हो जाता है। क्या, अरे ये तो हमारे घर में कपड़ा धोती थी माता इस डंडे से पुराने दबने, ये छोटी हुआ करती थी कपड़ा धोने के लिए, क्या लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ड्रम, पूरा देश बंद हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हो गया देश का, हुआ क्या, कुछ भी नहीं, क्या पागलपन की हद है। भगवान को निकालो, इनको घर में, इनका फोटो छापा हुआ है घर में बहुत सुंदर, एक ये हीरो, दूसरा हीरो, ये तुम हो गए जीरो। अरे कृष्णा, भगवान को नहीं, कैसे भी भगवान कैसे निकले, जगह तो उतनी है ना, तो भगवान का फोटो लगाए तो इसका कहां लगाएंगे, तो भगवान को हटा के बाहर रखो, ये बड़ा कृष्ण भाई, ये तो घर में झगड़ा कराता है, और ये डंडा कौन था तुम्हारे घर में, ये तो डंडा लेके आया है वो तो कहे। अरे कृष्ण, कहना बहुत, क्या हो क्या गया है दुनिया को पता नहीं। पहले लोग घंटों भगवान की कथा सुनते थे थकते नहीं थे, अब घंटों टीवी देखते हैं थकते नहीं है, मैच भी बैठे देखते थकते नहीं है, तो प्रवृत्ति तो वही है, कुछ न कुछ तो चाहिए भगवान को। अब देवी लोग असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो भगवान की कथा कीर्तन में आनंद आता है, और असुर प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसकी जगह कहीं से तो भरनी है ना, तो कुछ और तो चाहिए ही चाहिए दोनों के लिए, ये बात उनको अच्छी लगती है, बहुत इसमें लग जाते हैं। तो दो प्रकार के लोगों का यहां वर्णन है, किसी न किसी को आपको अपना आइडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह आपके हृदय में हमेशा खाली रहती है। क्या खाली रहती है, कि किसी को हमारे दिल में कोई हमारे लिए क्या होना चाहिए, आइडल को क्या बोलेंगे, आदर्श होना चाहिए। तो ऋषियों के जमाने में आदर्श सबके लिए भगवान की शिक्षाएं हुआ करती थी, एक समय में भगवान की शिक्षाएं, भगवान के चरित्र लीला रूप गुण आदि, और राम हमारे आदर्श हैं, इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे आदर्श इष्ट हैं, भगवान नरसिंह हमारे आदर्श इष्ट हैं। अथवा यहां से भी कुछ लोग रजोगुण की प्रवृत्ति से ज्यादा प्रभावित थे, तो अन्य देवी देवताओं को भी अपना इष्ट मानते थे, वो भी फिर भी साधारण संसार के लोगों से तो बहुत बड़े महान भगवान के भक्त हैं। ये जमाना बदल गया, एक भगवान तो गया लेकिन कुछ महापुरुषों को लोग फिर भी अपना आदर्श माना करते थे, घरों में महात्माओं के ऋषियों के चित्र हुआ करते थे, वो उनके आदर्श होते थे, बच्चों को दिखाते थे। फिर जमाना बदल गया, फिर वीर पुरुषों के चित्र घरों में लगने लगे, आदर्श हो गए। अब 50-100 साल पहले थोड़ा कम होते होते आदर्श कौन हो गए, फिर कहते हैं शिवाजी महाराज हमारा आदर्श है, महाराणा प्रताप सिंह हमारा आदर्श है, आदर्श हो गया अपना महाराज रणजीत सिंह हमारा आदर्श है। तो ऐसे भी वीर पुरुषों को लोगों ने आदर्श माना, वो भी आस्ते आस्ते लुप्त हो गए। अब लोगों के आदर्श या तो फिल्म के अभिनेता नेत्री है, नहीं तो क्रिकेट के खेलने वाले हैं, या कोई गाने वाले हैं। तो देखो कितनी गिरावट आई है समाज में, जिसका भगवान आदर्श हुआ करता था, ऋषि गुरुजन आदर्श हुआ करते थे, वहां से गिरते 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 अब तो सबसे नीच, जिन लोगों की प्रवृत्ति है जो सबसे बड़ा धोखा करते हैं, उन लोगों को हमने जीवन का आदर्श बना रखा है। कितनी गिरावट हमारे चरित्र में आई है, इसके ऊपर कभी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे को भगवान की तरफ ले जाने वाला तो रास्ता था उसको हमने बंद कर दिया है। जो रास्ता हाईवे काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये तीनों नरक में ले जाने वाले द्वार हैं। इनको देखने से क्या आएगा? अभिनेत्री और को देखेंगे तो क्या आपके मन में आएगा? काम, काम आएगा, कुछ और आएगा, काम ही आएगा। और किसी ने आपको काम पूरा करने से रोका तो आपको आएगा क्रोध, और काम पूरा करने के लिए करोगे कुछ लोभ, तो ये तीनों नरक में ले जाने के द्वार हैं। नरक द्वारम, रॉयल रोड टू दी हेल, प्रभुपाद लिखते हैं रॉयल रोड टू दी हेल, ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर तुम निश्चित रूप से ऐसे चले जाओगे जैसे फिसलने से नहीं आदमी ठीक फटाफट नीचे गिर जाता है, ऐसे जाके सीधा नरक में पहुंच जाओगे। लेकिन रॉयल रोड टू दी भगवान के पास है, आंखें बंद करके इसके ऊपर चलो, ये भक्ति का ऐसा मार्ग है, आंखें बंद करके पट्टी बांध के भागोगे तो दौड़ते हुए सीधे, क्यों तुम ऐसे जाओगे तो भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ले जाओगे। भले आंखें बंद कर दो, सूरदास ने आंखें बंद की हुई थी, बिलो मंगल ने आंखें बंद की हुई थी, भगवान हाथ से पकड़ के ले जा रहा था। दुनिया से आंखें बंद कर गए तो भगवान हाथ पकड़ के ले जाएगा। अब ये देवता उस भगवान को प्रार्थना करने के लिए आए हैं जो देवकी के उदर में प्रवेश हुआ है। अब देवता क्या कहते हैं पहली प्रार्थना में? पहली प्रार्थना कहते हैं सत्यम वर्तम सत्य परम त्रि सत्यम। अब इसमें सिर्फ सत्य 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 शब्द है पूरे श्लोक में। पहली बात कहते हैं भगवान आप सत्य व्रत हो, आपने वचन दिया था ना उसके ऊपर आप पूरे हो, आपने हमको कहा था कि हम प्रकट होंगे और आप आ गए, बस ये बात हमको बहुत अच्छी लग रही है कि आप सत्य व्रत हैं, जो कहते हैं उस बात को आप ठीक करते। तो पहले पहले क्या कहते हैं सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य, आपने जो कह दिया वो पत्थर के ऊपर लकीर है वो वैसे होगी, आपने हमसे वायदा किया था, आप आ गए हैं, हम आप बहुत प्रसन्न हैं। और अंत में कहते हैं त्वाम शरणम, त्वाम शरपण शरणम परपनाह, हम आपके शरण में हम आपकी शरण लेते हैं। शरणम परपनाह, परपना का मतलब हम आपके पांव पकड़ते हैं, हम आपके शरण में आए हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्यव्रतम हैं, आप सत्य का व्रत धारण करें, सत्य परम, आप परम सत्य है। भागवत के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, आप परम सत्य हैं। सत्य तो बहुत हैं संसार में, लेकिन सब सत्यों के आप परम सत्य हैं। और सत्यम त्रयी, त्रयी सत्यम, तीनों काल में सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान में सत्य हैं, आपकी सत्यता में कोई अंतर कभी नहीं आता। त्रयी सत्यम, त्रयी सत्यम, सत्यस्य योनिम निहत्य च सत्यम, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम परपना। जब उत्पत्ति करते हैं, जब संसार को चलाते हैं और जब प्रलय करते हैं, तब भी आप ही सत्य हैं। और आप सत्यस्य सत्य, सत्य सत्य का भी आप सत्य है, ये जगत सत्य है और आप भी सत्य हैं, तो दो सत्य तो नहीं हो सकते, सत्य तो एक होगा। बोला सत्य से सत्य, इस जगत सत्य के भी आप मालिक सत्य हो, तो सत्य के भी आप सत्य हो। तो ऐसे सत्य शब्द के द्वारा ये पूरा श्लोक है। देवता कहते हैं आप सत्य हैं, क्योंकि भगवान आपने अपने वचन से कभी नहीं फिरते हैं, इसलिए आप सत्य हैं। जो आपने एक बार निर्णय ले लिया आप उसको पूरा करते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप स्थिति प्रलय और उत्पत्ति के समय सत्य के रूप में रहते हैं, जैसे हमको तो पैदा किया जाए जो उत्पत्ति में, प्रलय में हम चले जाएंगे, लेकिन भगवान सब समय रहते हैं इसलिए आप सत्य हैं। जब तक कोई व्यक्ति सत्य को धारण नहीं करेगा तब तक आपको पा नहीं सकता। सत्य ही आपको प्राप्त करने का केवल एक मार्ग है, जो सत्य के ऊपर चलेगा वो भगवान आपको प्राप्त कर सकेगा। इसलिए असत्य के ऊपर चलने वाले लोग भगवान आपको पा नहीं सकते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद ने बहुत इसका सुंदर भावार्थ लिखा है और भागवत के पहले श्लोक के आधार के ऊपर भागवत लिखा है। मेरे ख्याल में कल सत्संग करना चाहिए तो इसी श्लोक सत्यम वाले के ऊपर करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर भावार्थ है तो इसके ऊपर कल फिर और चर्चा करनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर श्लोक आएंगे। इसके बाद तो श्लोक वो कहेंगे कि ये संसार में शरीर क्या है बना हुआ है, वृक्ष से उपमा देंगे। उसके साथ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हर एक चीज का वर्णन करते जाएंगे। दस प्राण है, नौ इंद्रियां हैं और पांच पांच इंद्रियों से भोग करता है। ऐसे वो इस वृक्ष को काटेंगे तब आपको प्राप्त करेंगे। फिर वो लोग जो आपके अंग ही आपके अंग का जो अवहेलना कर देते हैं वो तो ऊपर जाने के बाद भी नीचे गिर जाते हैं। बहुत सुंदर देवताओं की स्तुति के कुछ श्लोक है 25वें से। तो 26वें श्लोक से आगे दो तीन दिन देवताओं की स्तुति के ऊपर करते करते भगवान के प्रकट्य जन्माष्टमी का कैसे भगवान प्रकट होते हैं, चारों ओर से हर चीज सुंदर बन जाती है। तो ऐसे तक चलना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर चर्चा करें। 9 बजे कल के सब थके हुए भागे हुए हैं तो इतना काफी है। हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है तो सत्यस्य योनिम् सत्यम् सत्यस्य सत्य। बड़ा सुंदर श्लोक। हरे प्रभु बोलिए। प्रभु जी भगवान को प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? प्रार्थना हरे कृष्ण। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। ए नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो। ये बहुत सुंदर प्रार्थना चेतन महाप्रभु ने सिखाई है। ऐ नंद तनुज किंकरम, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो एक छोटा सा गिरा हुआ टुकड़ा हूं। किंकर, ए नंद तनुज किंकरम पतितम माम। पहले तो अपने आप को पतित मानना पड़े, गिर गए हैं, संसार में आए हैं, फंस गए हैं। अनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया इस भव सागर में गिर गया हूं, अब कौन मेरे को यहां से निकालेगा? पतितम विषमे भव तब कहा अनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम कृपया तव पाद पंकज धूलि। अरे आपके चरणों में जो धूलि का एक कण होता है ऐसा स्थान दे देंगे तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य मैं मानूंगा। ऐसे कई कण और आपके चरणों में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों की मुझे सेवा मिले ये मेरी अभिलाषा है, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये चेतना महाप्रभु की बहुत सुंदर प्रार्थना है। अपने आप को पतित मानो कि हम गिर गए हैं संसार में, हैं तुम्हारे भवसागर में गिरे हैं, अब अपने चरणों में एक कण के समान कहीं स्थान दे दोगे अपने भक्तों के चरणों में तो हम आपके चरणों को पा पाएंगे। ये प्रार्थना का बहुत सुंदर श्लोक। हमको तो आपको किसी को और विचार है प्रार्थना का? ये सबसे उत्तम प्रार्थना महाप्रभु के मुख से निकली है। कैसे लगता है ये प्रार्थना? आई नंद तनुज किंकरम पतितम। ये स्थिति अच्छी है, अपने आप को ऐसे कहना बहुत अच्छा है कि भगवान हम आपके दास हैं, कैसे भी गिर गए हैं अब हमको याद आ गया है, हम चाहते हैं कि आपके शरण में आए। ये प्रार्थना बहुत अच्छी है, भगवान के भक्तों का दास बनना, ये सबसे अच्छा प्रार्थना महाप्रभु की प्रार्थनाओं में, ये अच्छी प्रार्थना है। हाँ बेटी माया, सिर्फ माया है, कई रूपों में आ जाती है, हम जानते हुए नहीं कर पाते हैं तो माया है जो हमको रोकती है। मैं कहता हूं वो माया है, उसका नाम माया है। और कई रूपों में जब हम भगवान की भक्ति के लिए विचार भी करते हैं तो माया कई रूपों से हमको वहां से रोकने का प्रयास करती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, भगवान ने भगवद गीता में सुनाया, दैवी एष गुणमयी मम माया दुर्तयया। ये मेरी जो माया है तीन गुणों की बनी हुई ना, ये ऐसी मजबूत रस्सी है, सबको बांध के रख देती है, वो वहां से छूट नहीं सकता है। वो आना भी मेरे पास आए तो वो उसको छोड़ती नहीं, तो भगवान छूटेंगे कैसे, कैसे आपको पाएंगे? तब भगवान ने बहुत सरल साधन बताया है, ये माम प्रपद्यंते मायाम एताम तरंती ते, जो मेरा शरण ले लेता है उसको माया अपने आप छोड़ के चली जाती है। तो भगवान का शरण ग्रहण करने के लिए लालसा अपने मन में पैदा करो कि भगवान हम आपके पास आना जाना चाहते हैं, हम आपके हैं। जैसे ही ये मन में भाव आएगा, माया भक्ति करोगे तो माया भाग जाएगी। दो स्त्रियां एक दूसरे को नहीं सहती हैं, भक्ति और माया, भक्ति करोगे माया भाग जाएगी, ज्ञान के पीछे माया ऐसे भागती है कि उसको पकड़ के नीचे गिरा देती। तो भक्ति करोगे, भक्ति में भगवान की शरणागति मुख्य है, तब माया से छूटेंगे, और कोई रास्ता नहीं। ये माम प्रपद्यंते, जो मेरा शरण लेगा वही इससे छूट सकता है, और कोई नहीं छूट सकता है। माया से छूटना बहुत मुश्किल है, माया बहुत बड़ी बलवान है। माया कैसे दुनिया को किक लगाती है, प्रभुपाद ने कहा माया सबको लात मारती रहती है इधर से उधर, फिर भी ये उधर ही जाते हैं। माया की लात हम रोज सहते हैं लेकिन फिर भी उधर जाते हैं। देखा कुत्ता गधे कैसे एक दूसरे को लात मारते हैं, फिर भी उधर ही जाते हैं, लात मारो फिर भी उधर जाते हैं। ये माया का काम है लात मारना, और संसार में चारों ओर से सबको लात मार रही है। और एक माया का बहुत बड़ा नाम है दौलत, वो भी दो लात मारती है, पहले आती है तब मारती है, तो ऐसे हो जाता है आदमी, और फिर जाते हुए मारती है कुबड़ा हो जाता है। तो ये भी एक माया का बहुत बड़ा मजेदार नमूना है दौलत। आदमी को भगवान भुलाने के लिए सबसे बड़ी शक्तिशाली माया ने दौलत को बनाया, किसी को नहीं सुख से बैठने देती, आ गई तो भी दिमाग खराब, गई तो भी दिमाग खराब। 12 अवगुण लिखे हैं भागवत में इसका। तो ये माया बहुत बड़ी प्रबल है इसका, और प्रभुपाद ने कहा माया लात मारती है लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको प्रेम से भक्त बनाना है लोगों को। एक 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 वो बिंदु में ये आर्टिकल आया था, माया लात मारती है लेकिन हम प्रेम से भक्त बनाते हैं, लात मारना हमारा काम नहीं। हम माया के काम दोनों का एक ही है, वो भी चाहती है कि आप लोग दुनिया से तंग हो जाओ, इतनी लातें मारती है कि आपको अरे बाबा छोड़ो छोड़ो नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हाँ अब जाओ भगवान के पास तब बोलेंगे जाओ। तो वो भी काम वही करती है कि हमको इस दुनिया से इतना परेशान करती है कि हम ही कहेंगे नहीं चाहिए, और भक्त भी वही काम करता है कि चलो भगवान के पास चले, लेकिन वो लात मार के करती है और भगवान और भक्त भात खिला के करते हैं, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है। वो लात मार के दुनिया से बेमुख करती है और भक्त भात खिला के, भगवान का प्रसाद को भात कहते हैं, जगन्नाथ का भात, तो वहां लात है या भात है, अब आप च्वाइस आपकी है, भात चाहिए लात चाहिए, भात चाहिए तो भक्तों के पास चाहिए, लात चाहिए तो माया के पास है ही, वो तो सब खा ही रहे। सीधा सा रास्ता है, दो ही तरफ है, तीसरा तरफ है ही नहीं बीच में। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।